वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्रिका विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्रिका मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से गलातियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस गलातियों के विश्वासियों को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, अर्थात उस सुसमाचार को उसने दिया जो स्वर्गदूत भी यदि बदले तो उसे ना मानने की बात कही गई। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि पौलुस हमें इस पत्री के द्वारा से और क्या कुछ बताना चाहता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं, हमारी गलती और त्रुटियों को हमारे सम्मुख लाते हैं ताकि हम सुधारे जाएं। आज जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं सीख सकें, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सकें और हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार की त्रुटियों से आप हर एक की रक्षा करें। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, किसी प्रकार की समस्या में उलझे हुए हैं, जो विवाह के लिए अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, पारिवारिक समस्याओं में उलझे हैं, पिताजी आप उनकी सुधि लीजिए, ताकि आज के इस वचन के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा वे भी अपने जीवन में आपकी शांति को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद को निकाल लीजिए। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद लिखा हुआ है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। इस पद में हम देखते हैं प्रसन्न करता हूँ का अर्थ है मित्र बनाना। किसी किसी अनुवाद में लिखा है पक्ष प्राप्त करना। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 और 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अपनी या अन्यों की तुलना में। सुसमाचार का प्रचार भटके हुए मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं है। कोई भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकता या रख सकता है। जी हाँ, यदि आज अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आप संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि पापी जन परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से घृणा करते हैं। कलीसिया में भी उद्धार से रहित सदस्य अनुग्रह का सुसमाचार सुनना नहीं चाहते, वे पसंद नहीं करते हैं, वे देह के सुहाता हुआ संदेश सुनना चाहते हैं, अर्थात शारीरिक बातों को वे सुनना पसंद करते हैं। अनुग्रह का सुसमाचार हमें धूल में गिराता है और परमेश्वर के समक्ष भिखारी बनाता है। मेरे प्रियो, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह विधि विधान का पालन करता है। वह सोचता है कि उसे उद्धारकर्ता नहीं एक सहायक की आवश्यकता है। अब हम तीसरी बार डूब रहे हैं। हमें किसी उद्धारक की आवश्यकता है जो हमें बचाए। व्यवस्था के प्रचारक आज गणमान्य और प्रचलित हैं। एक बार मैं एक प्रचारक का संदेश सुन रहा था। वह मसीह के संसार में आगमन और उसकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर संदेश दे रहा था, परंतु वह इस बात को भूल गया कि वह पापियों में प्रचार कर रहा है जिन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। वह अपने श्रोताओं को यह बताना भूल गया कि मसीह यीशु उनके लिए मरा और उन्हें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि वे उद्धार पाएं। इसकी अपेक्षा उसने समर्पण पर बल दिया, उन्हें समर्पण के लिए आमंत्रित किया कि वे अपना जीवन मसीह को दे दें। मेरे मित्रों आइए हम ईमानदार बने। मसीह आपके और मेरे पुराने स्वभाव का समर्पण नहीं चाहता है। हमारे पास उसको समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है। काश हम इन बातों को सीख पाते, समझ पाते कि वह मेरा और आपका उद्धार देखना चाहता है। परमेश्वर तो आपसे मसीही जीवन जीने को भी नहीं कहता है, क्योंकि आप जी भी नहीं सकते। वह तो आपके द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है। यही गलातियों की पत्री की शिक्षा है। परंतु पहले हमें मसीह के पास पापी रूप में ही आना है और उद्धार पाना है। हमारी कलीसियाएं उद्धार से रहित मनुष्यों से भरी हुई हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह के पास आकर उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। वे तो बस यही सोच रहे हैं कि उन्हें उसे किसी न किसी प्रकार का समर्पण करना है। मेरे मित्रों आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। वही आपको कुछ देना चाहता है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दे दी। देने वाला सिर्फ वही है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ, सीधी सी बात है, क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का विवेक विधि विधान का अधिक अभ्यस्त होता है और विधि का बोध उसे कर्म करने पर बाध्य करता है, और मनुष्य उस तथ्य के लिए कि उसका कार्य अधूरा है और अधिक कर्म करने का प्रयास या यत्न करता है। वह पापों को कर्मों के साथ तौलकर कर्मों का पलड़ा भारी रखना या करना चाहता है कि उसको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो जाए। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने भी यही किया था और उसके कर्मों का पलड़ा भारी था, परंतु जब वह मसीह के पास आ गया तब उसने कहा, फिलिपियों की पत्री 3:7-8 पद में, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पवित्र आत्मा आज अनुग्रह की गवाही देता है। यह सुसमाचार का अपराध बोध है जो हमें विश्वास के निकट लाता है। सच तो यह है कि व्यवस्था मनुष्य के पतन का इनकार करती है, या कहें चर्चा नहीं करती है। कैन की भी यही स्थिति थी। अनुग्रह मनुष्य के पतन का अनुमोदन करता है, जैसा हाबिल ने किया जब वह परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर के आया। मेरे मित्रों, अब हम एक नए भाग में प्रवेश करते हैं जो प्रेरित पौलुस के विषय में है, और यह अरब में उसका अनुभव, यरूशलेम में प्रेरितों के साथ का उसका अनुभव, और अंताकिया में पत्रस के साथ का उसका अनुभव को बताता है। यह अध्याय 2 के प्रथम भाग में है जो हमें ले चलेगा। मित्रों, हमने देखा कि पौलुस कहता है कि हमें मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अर्थात विश्वास द्वारा मसीह यीशु को ग्रहण करके उद्धार पाना है जो अनुग्रह के द्वारा है, व्यवस्था पालन से नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे कर्म उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। अब पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभवों की चर्चा करता है, तो आइए सबसे पहले हम देखें अरब में पौलुस के अनुभव। पौलुस एक बार फिर से वही कहता है जो उसने पद 1 में कहा था कि वह परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त किया गया है। जब वह कहता है, मैं तुम्हें बताए देता हूं, अर्थात तुम्हें स्मरण कराता हूं कि जो मनुष्य का है वह मनुष्य के अनुसार है, अर्थात जो सुसमाचार पौलुस को मिला वह मनुष्यों ने उसे नहीं सुनाया था या मनुष्यों से उसे नहीं मिला था। यहूदी मत उसके प्रचार पर ही नहीं, उसके प्रेरित होने पर भी उंगली उठाते थे कि वह 12 शिष्यों में से एक नहीं था, वह तो बाद में आया था। अतः वे उसके प्रेरित होने पर संदेह का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। तब पौलुस इस विरोध के प्रतिवाद में उस तथ्य का प्रकाशन करता है जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने उसे सीधा प्रेरिताई के लिए बुलाया था, या कहें शिष्य होने के लिए बुलाया। तो आइए हम देखें गलातियों के पत्री 1:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। मेरे प्रियो, पौलुस ने प्रेरित का पद स्कूल जाकर या मनुष्यों द्वारा सिर पर हाथ रखवा कर नहीं प्राप्त किया था। पौलुस की प्रेरिताई और सुसमाचार प्रभु यीशु के सीधे प्रकाशन द्वारा उसे प्राप्त हुए थे। सुसमाचार उसी प्रकार का प्रकाशन है जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। प्रेरित पौलुस के लिए सुसमाचार पर से पर्दा उठाया गया था। वह न तो पत्रस द्वारा, न याकूब द्वारा और न ही यहूना द्वारा प्रेरित चुना गया था, वह प्रभु यीशु की सीधी बुलाहट द्वारा प्रेरित बना था। हम आगे पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 1:13-14 में लिखा हुआ है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। यहाँ पर पौलुस कहता है, तुम मेरे जीवन के बारे में तो सुन चुके हो। वह उन्हें बताता है कि वह एक कट्टर यहूदी था। पौलुस को यहूदी विश्वास में मुक्ति नहीं मिली थी, उसे यहूदी विश्वास से मुक्ति मिल गई थी। आइए अब उसके प्रभावी कथन को सुने। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लोहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, पद 15 में हम देखते हैं, इससे प्रकट है कि वह परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया था। और पद 16 में अन्य जातियों का अर्थ है वे जो यहूदी नहीं थे, अर्थात गैर यहूदी। पौलुस ने मांस और लहू से सम्मति नहीं ली थी, वह किसी मनुष्य से अधिकार प्राप्त नहीं किया था, परंतु वह सीधे प्रभु यीशु के प्रकाशन से सुसमाचार प्राप्त करके प्रचार करता था। वर्षों पूर्व एक आधुनिकतावादी था जिसने झूठी शिक्षा दी और पौलुस के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसके प्रचार को लोगों ने सुना है। उसने पौलुस को विशिष्ट विद्वान कहा था, मैं भी मानता हूं, और मुझसे अधिक ज्ञानवान विद्वान भी उसे सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। उस लेखक का कहना है कि पौलुस मूसा की व्यवस्था और यूनानी दर्शन शास्त्र का सर्वोत्तम विद्वान था। उसके, अर्थात लेखक के अनुसार, पौलुस ने इन दोनों विचारों को जोड़कर अपना मसीही मत तैयार किया था। परंतु इस पत्र में पौलुस कहता है कि उसने सुसमाचार इस रीति से नहीं पाया था, उसका सुसमाचार सीधा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से आया था। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 18 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। मेरे विचार में यह पद प्रेरितों के काम के पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 से 29 पद के विवरण से ही है। यरूशलेम पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी एक चेला है। परंतु बरनाबस ने उसे अपने साथ चेलों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाब से यीशु के नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता था और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद भी किया करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। इन सब घटनाओं के समय को जोड़कर देखें तो 3 वर्ष होते हैं, तो इसका मतलब है पौलुस 3 वर्ष से कम समय रेगिस्तान में था। यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर अपने प्रचारकों को कैसे प्रशिक्षित करता है। उसने मूसा को रेगिस्तान में प्रशिक्षण दिया, उसने अब्राहम को प्रशिक्षण देने के लिए असामान्य स्थिति में रखा, एलिय्याह का अनुभव भी ऐसा ही था। परमेश्वर की रीति यही थी कि वह अपने लोगों को रेगिस्तान में प्रशिक्षण दे। दाऊद भी शाऊल से बचकर भागते समय गुफाओं में रहता था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद परमेश्वर से कह रहा था कि वह तीतर की नाई खोजा जा रहा है, वह सदा ही खुले आसमान के नीचे था। प्रभु ने पौलुस के साथ भी यही रीति अपनाई थी। परमेश्वर ने उसे लगभग 3 वर्ष रेगिस्तान में रखा। इसके बाद वह यरूशलेम में पत्रस के साथ 15 दिन तक रहा। गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। ध्यान दीजिए, पौलुस, पत्रस और यीशु का भाई याकूब के अतिरिक्त किसी अन्य शिष्य के संपर्क में नहीं था। शिष्यों के साथ उसका संपर्क मात्र इतना ही था, अतः वह उनसे कुछ नहीं सीखा, जैसे कि हम आगे देखेंगे। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं जिससे आधुनिकतावादी का उल्लेख कर रहा था उसने लिखा कि पौलुस ने मूसा की व्यवस्था और यूनानी दर्शन को जोड़कर सुसमाचार का प्रतिपादन किया है, परंतु पौलुस यहाँ कहता है कि उसने सुसमाचार किसी मनुष्य से नहीं सुना। वह कहता है कि वह झूठ नहीं बोलता है। मैं उस आधुनिकतावाद को झूठा कहने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, परंतु पौलुस कह रहा है गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 21 से 24 पद में, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद मैं सूर्या और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलिसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। मेरे प्रियो, यरूशलेम के विश्वासी पौलुस को अपनाने में पीछे हट रहे थे। बरनाबस की सहायता के बिना पौलुस को कलीसिया में प्रवेश पाने के लिए बहुत समय तक रुकना पड़ता। उनके भय का कारण था कि पौलुस कलीसिया को सताता था, परंतु वे मन फिराव को भी समझते थे। वे जानते थे कि मनुष्य का परिवर्तनकारी अनुभव कैसा भूकंप स्वरूप होता है, परंतु तार्शीश के शाउल के मन फिराव पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उन्हें वह अनहोना ही नहीं असंभव भी लगता था। पद 21 से 24 में पौलुस अपने मन फिराव के बाद के आरंभिक वर्षों का उल्लेख करता है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में वह समय उसके लिए आनंद का समय नहीं था। रोमियो के पत्र 7 में वह अपने निजी जीवन की असफलता की चर्चा करता है। प्रेरित पौलुस के जीवन के 3 काल हैं। आइए हम पहले 2 कालों को संक्षेप में देखें। पहला है, पौलुस एक घमंडी फरीसी था। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, तेज थी और वह मूसा की व्यवस्था का विद्वान था। उसकी जीवनी लिखने वालों में अधिकांश का कहना है कि यदि वह प्रेरित नहीं भी होता या विश्वास में नहीं आया होता तो भी संसार उसकी बातों पर ध्यान लगाता। वह एक विशिष्ट मनुष्य था, परंतु वह एक घमंडी युवा फरीसी था जिसे अपने पूर्ण ज्ञान पर घमंड था। वह मसीह यीशु से और कलीसिया से घृणा करता था और उन्हें समाप्त कर देना चाहता था, जैसा आज भी लोग करते हैं। वह उन्हें सताने में अत्यधिक निर्दयी था। अब दूसरा काल दमिश्क के मार्ग से आरंभ हुआ। जब उसे भूमि पर गिराया गया था, उस बुद्धिमान फरीसी को उस समय बोध हुआ कि उसने मसीह यीशु को नहीं जाना है जिसे जानना जीवन है। वह सोचता था कि यीशु मर चुका है, अतः उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 5 पद में, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरी कलीसिया को सताना मुझे सताना है। प्रभु के संपर्क में आते ही उसने पूछा, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? मसीह से साक्षात्कार वार्तालाप करने के बाद उसने अरब में कुछ समय बिताया। उस समय उसने प्रचार किया, परंतु पाया कि जो वह करना चाहता है कर नहीं पा रहा है। अंत में वह पुकार उठा, रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मेरे मित्रों, यह किसी उद्धार रहित मनुष्य की नहीं, प्रेरित पौलुस के आरंभिक वर्षों की पुकार है, मन परिवर्तन के आरंभिक चरणों की पुकार। अब तीसरा काल हम देखते हैं। अब आता है उसका प्रतापी जीवन जिसमें वह आत्मा में होकर चला। यह वह समय था जब वह प्रभु के लिए जी रहा था। आज हम अनेक विश्वासियों को भी इसी स्थिति में होने की आवश्यकता है। आज अनेक अभागे और आनंद रहित मसीही हैं, जबकि उनका उद्धार हो गया है। प्रभु के महान दास डीएल मूडी ने कहा था, कुछ लोगों के पास दयनीय होने के लिए पर्याप्त धर्म होता है जो उन्हें दयनीय बना देता है। काश हमारे पास यरूशलेम में प्रेरितों के साथ पौलुस के अनुभवों की अधिक जानकारी होती, और मुझे निश्चय है कि इस समय आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि पौलुस ने अन्य शिष्यों से अलग सुसमाचार प्राप्त किया तो क्या वह उसी सुसमाचार का प्रचार करता था जो शिष्य 3 वर्ष यीशु के साथ रहने और उसका पुनरुत्थान देखने के बाद करते थे? इस समय यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि पौलुस वही सुसमाचार नहीं सुना रहा है तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यरूशलेम में प्रेरितों ने पौलुस के सुसमाचार प्रचार को स्वीकार किया कि वह वही सुसमाचार है जो उन्हें यीशु के समय मिला था। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यह जानना अति आवश्यक है कि हम किस प्रकार का सुसमाचार सुन रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप सुसमाचार नहीं पढ़ेंगे आप सच्चे सुसमाचार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप अवश्य ही सुसमाचार का अध्ययन करें ताकि आप वचन की सत्यता को जान सकें और परमेश्वर के महान आशीषों को ग्रहण कर सकें। मित्रों, यहां आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अब अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु के वचन का अध्ययन अवश्य करते रहें, प्रभु का भय माने, उसमें बढ़ें और निश्चय जाने कि परमेश्वर इस सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन को बदल देंगे और आपके जीवन को आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। क्या आज आप सुसमाचार पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज आप निर्णय लीजिए, अपने जीवन को प्रभु के निकटता में लाइए और निश्चय जानिए कि प्रभु का वचन आपको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। प्रभु आप सबको आज के इस अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।